राम राम हरे हरे,
राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवत के प्रातःकाल के प्रवचन में। धारवाड़ में ये तीसरे दिन भागवत के ऊपर प्रातःकाल का सत्संग चल रहा है और सायंकाल को भागवत प्रवचन चल रहा है। सुबह के सत्संग में हम जो विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है ग्रस्त जीवन में मानव जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। और ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से पूछा है, यही प्रश्न सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा है, ऐसा ही प्रश्न कुलीन ग्राम के निवासियों ने सत्यराज खान अधी ने महाप्रभु श्री चेतना से पूछा है। तो कल इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। जीव जो हमारी असली पहचान है, जीवात्मा, उसका स्वरूप, उसका असली पहचान, उसका असली धर्म है कृष्णेर नित्य दास, भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। तो फिर संसार में दुख क्यों भोग रहा है? कृष्ण भूलिया, भगवान श्री कृष्ण को भूलने के कारण माया की गोद में गिरता है और संसार के अंदर जन्म मृत्यु के चक्कर में दुख भोगता है। तो अब यहां से मुक्त कैसे हूं? कृष्ण ने कृपा करके साधु और शास्त्र को दिया और स्वयं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। इन तीन साधनों से किसी के ऊपर कृपा हो जाए तो मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है, गुरु, शास्त्र और परमात्मा। अब साधन क्या है भगवान को प्राप्त करने का? हमारों को पता लग गया कि हम कौन हैं, हमारी पहचान का पता लगा, हमको ये भी पता लग गया कि हम दुख इसलिए भोग रहे हैं कि भगवान को भूल गए हैं, तो फिर भगवान को याद करना चाहिए। इसलिए साधन क्या है? चेतना महाप्रभु साधन के लिए कहते हैं, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्य रसाधन। The Vedic literature give information about the living entity's eternal relationship with Krishna, which is called sambandh. Vedic shastra jeev ka jo bhagwan ke sath nitya sambandh hai, jo sambandh hai usi ko sambandh gyan kehte hain. The living entity's understanding of this relationship and is acting accordingly is called abhidheya. जब इस संबंध का पता लगता है कि हम भगवान के सेवक हैं और जब सेवा करने में लगता है, जब भगवान की सेवा में आदमी संलग्न हो जाता है, लग जाता है, तब उसको कहते हैं कि अभिधेय। अभिधेय का मतलब भगवान की सेवा में लगना। रिटर्निंग होम बैक टू गॉड इट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ एंड इज कॉल्ड प्रयोजन। वापस इस संसार के बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम में जाना, इसको प्रयोजन कहते हैं। या जीवन का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन का मतलब गोल क्या है जीवन का? वापस भगवत धाम जाना। तो इन तीन शब्दों का पहली बार सिर्फ गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में चैतन्य महाप्रभु ने इन तीन शब्दों को सिखाया है कि साधन क्या है, संबंध ज्ञान प्राप्त करना, साध्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सेवा करके उसके धाम में पहुंचना, ये दो है। तो अब कृष्ण के विषय में ज्ञान कैसे प्राप्त हो, कैसे ये जानकारी कहां से मिले, उसका साधन क्या है, ये बात नारद ऋषि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि कृष्ण विषय संबंध अगर स्थापित करना है, भगवत संबंध, तो उसके लिए श्रणवन् भगवतो अभीक्षणम् अवतार कथामृतम् शब्दधानो यथा कालम् उपशांत जनावृतः सदसंगादशन कही संगम आत्मजायात्मजादीशो विमुच्येन मुच्यमानेशो स्वयं स्वपन वद उथित्तः श्रवणम सुनना चाहिए भगवत भगवान के विषय में अभीक्षणम सदा के लिए रोज प्रतिदिन क्षण क्षण अभीक्षणम अभीक्षण का अर्थ प्रभुपाद जी लिखा है ऑलवेज भगवान के विषय में सुनना चाहिए कौन से भगवान कैसा पता लगे भगवान कौन है अवतार कथा अमृतम जो भगवान के अवतार की कथा है भगवान जब इस धरती के ऊपर आते हैं तभी हमें पता लगता है कि भगवान कौन है नहीं तो भगवान के विषय में कोई अनुमान लगाएगा ये भगवान हो सकता है वो भगवान हो सकता है लेकिन जब भगवान स्वयं यहां आते हैं और कहते हैं जैसे भगवद गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मैं ही सबका मालिक हूं मुझसे ही सबकी उत्पत्ति होती है तो कोई भगवान जब स्वयं आगे कहते हैं कि मैं भगवान हूं तब उसको मानना चाहिए ना ऐसे कोई भी संसार में कहता है मैं भगवान हूं तो उससे उसको मानने से काम तो चलेगा नहीं तो भगवान अवतार कथा अमृतम भगवान की कथा कैसी होती है अमृतम अमृतम का मतलब जन्म मृत्यु से मुक्त करने वाली होती है सो कथा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की कथा सुननी चाहिए कैसे सुननी चाहिए श्रद्धाना बहुत श्रद्धा के साथ सुननी चाहिए भगवान की कथा सुनने में बहुत ज्यादा श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा के पीछे लिखा है यथाकालम और यथाकालम का मतलब जब जब समय हो और प्रभुपाद ने इसके भावार्थ में लिखे है विशेष रूप से ग्रस्तों को समय दोपहर को या शाम को मिलता है सुबह सवेले वो भागा दौड़ी में होते हैं तो इसलिए यहां प्रभुपाद ने लिखा है कि विशेष रूप से हमने देखा है कि ग्रस्तों को समय भागवत के सुनने का सायंकाल को या दोपहर को मिलता है इसलिए विशेष स्त्रियों की कथा 2-4 बजे के बीच में होती है शाम को उनको पकाना होता है घर में सुबह घर के काम में तो यथाकालम का अर्थ है जब उचित समय व्यक्ति को हो तब भगवान की कथा सुनने का श्रद्धा के साथ करना चाहिए उपशांत जनावृत जनरली ए ग्रस्त कैन फाइंड टाइम इन इवनिंग और इन आफ्टरनून उपशांत का मतलब वो सारे दुखों से ऊपर उठ के शांत हो जाएगा भगवान की कथा सुनने से कौन से संसार के अंदर ऐसे बंधन है जिनसे वो बच जाएगा चारों ओर से घिरा हुआ है इस दुनिया के अब देखो कथा में अभी बैठे हैं तो यहां से बाहर निकलते कहां जाएंगे दुकान में जाएंगे या घर में जाएंगे जहां भी जाएंगे जो लोग आपके चारों ओर होंगे वो आपको भगवान को याद करने में का कभी मौका नहीं देंगे जहां भी जाओगे भगवान को याद करने का मौका नहीं लेगा इसका मतलब कथा से बाहर जब भी जाओगे ऐसे लोगों से आप घिर जाते हो जो आपको भगवान को याद करने का मौका नहीं देते सतसंगाचनैक संगम सतसंग सतसंग का मतलब अच्छा संग सत अच्छे संग को बोलते हैं और सत भगवान को भी बोलते हैं और सत शास्त्र को भी बोलते हैं शास्त्र का श्रवण साधु के संग में सत्संग कहलाता है साधु के संग में शास्त्र को श्रवण किया जाए तो इसको सत्संग कहते हैं सत भगवान को कहते हैं सत कौन है संसार में सत्यम परम धीमहि भागवत कहती है हमारी बुद्धि उस परम सत्य में लगे और वो परम सत्य कौन है जन्मादिस्य यतः जिससे इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है जो इस सारी सृष्टि का पालन कर रहा है और सारी सृष्टि जिसमें समा जाती है वो परम सत्य है उस परम सत्य में हमारी बुद्धि लगे कैसे हमारी बुद्धि उस भगवान में लगेगी परम सत्य श्री कृष्ण में लगेगी जब भगवान के भक्तों के संग में बैठकर भागवत भगवत गीता आदि शास्त्रों का श्रवण करेंगे तो भक्तों के संग में सतसंगात क्षणिक संगम क्षणिक संगम स्नेही स्नेही आस्ते आस्ते धीरे धीरे एक दिन में नहीं होगा, ओवरनाइट में नहीं होगा। प्रतिदिन अगर ऐसे भगवान की कथा के श्रवण का नियम बना के भक्तों के संग में बैठेंगे तो आस्ते आस्ते जो हमको बंधन के कारण है उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। बंधन के कारण कौन से? आपके संसार के अंदर। आप जरा विचार करके बताओ कि कौन सी चीजें हैं जिसके बंधन के कारण भगवान की कथा में नहीं जा सकते, भगवान का नाम नहीं जप सकते, तो क्या बंधन क्या है? हाँ, फैमिली, घर, फैमिली। तो आप भी जानते हैं कि हमारा संसार में बंधन का कारण है घर, फैमिली, दुकान, यही बंधन है ना। नारद जी कहते हैं आत्मजाया आत्मजादीशु, आत्मजाया आत्म, पहला तो शरीर ये बंधन है सबसे बड़ा। ये शरीर सुबह आप कथा में आने भी चाहो, अगर इसको आदत डाल दिए चाय पी के आने की तो चाय पिए बगैर नहीं आ सकते हो। शरीर का एक काम बढ़ा दिया हो तो ये शरीर ही सबसे बड़ा ऐसा झमेला है कि बाल भी ठीक नहीं किए तो बाहर नहीं जा सकते, उसको भी सीधा करने पड़े, इसलिए हम रखते ही नहीं, झंझट ही खत्म है ही नहीं, तो सफा क्या संभारे क्या उसको, वो भी परेशानी से मुक्त हो गया ना। तो ये शरीर पहले बंधन है, आत्म मतलब शरीर, जाया घरवाली, आत्मजा बच्चे, आदिशु और सारे संबंधी। ये आपने कहा इसलिए इसमें से मैं पढ़ के सुना रहा हूं कि ये संसार में हमको भगवान की कथा सुनने या भगवान का नाम लेने में रुकावट डालते हैं। स्वयं स्वपन विमुच्येना मुच्य मानेशो, थोड़े समय के लिए आदमी इस संघ से बाहर निकलने का अभ्यास करे, थोड़े समय तक इस संघ से बाहर निकलने का अभ्यास करे। मुच्य मानेशो, कैसे निकल सकता है बाहर? आगे बहुत अच्छी बातें लिखेंगे कि घर में रहो, सबकी बात सुनो, लेकिन भगवान को मत भूलो। लेकिन यहां लिखा है कि स्वपन वगा उतिथा, स्वपन में मतलब रात को सोया हुआ आदमी जब होता है तब देखता है स्वपन में मेरा घर बन गया, मेरा दुकान बन गया, मैंने इतना कमा लिया, लेकिन सुबह उठ के स्वपन खुल जाता है तो कुछ भी नहीं होता। तो ये सारा संसार का हमारा संबंध एक स्वप्न जैसा, हमारा स्वप्ने का महल है, और जैसे ही सांस लेना बंद करता है कोई व्यक्ति तो ये महल बिल्कुल एकदम गिर के धरती के ऊपर आता जाता है, सब कुछ एकदम समाप्त हो जाता है। इसके पीछे भाव क्या है ये समझना चाहिए। इसके पीछे भाव ये है कि जब भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की दया और करुणा का वर्णन सुनेंगे कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने अपने भक्तों से स्नेह प्रेम करते हैं, तो फिर हमारा भगवान से संबंध स्थापित होगा। अभी हमारा संसार में संबंध है, जिस चीज से संबंध होता है उसकी तरफ हमारा ज्यादा ध्यान जाता है। इस दुनिया में संबंध ही किसको बोलते हैं? आपके यहाँ कन्नड़ में पता नहीं किसको बोलते हैं, हमारे यहाँ कहावत यह है कि जब लड़की का किसी घर में लड़के का विवाह होता है, लड़की का विवाह होता है, तो दोनों परिवारों को संबंधी बोलते हैं, इसको संबंधी बोलते हैं कि ये संबंधी हो गए। अब आप इस संबंध को सिर्फ ऐसे देखिए, लड़के का विवाह किसी लड़की के साथ, पहले तो मंगनी हो गई, एंगेजमेंट हो गई, अब लड़के का विचार उस लड़की के विषय में ज्यादा होने लगेगा, विवाह होने के बाद उसके साथ जो संबंध ज्यादा बढ़ जाएगा तो घर वालों के साथ संबंध कम होता है कि नहीं होता है? इस दुनिया में देखा है कि नहीं देखा है? जो लड़की माँ के घर में 15-20-25 साल पलती है, जैसे उसका संबंध पति के साथ होता है, घर को छोड़ के आती है कि नहीं आती? अपने आप छोड़ के आ जाती है ना, माता को पिता को 4 महीना 5 महीना 6 महीना नहीं जाती है, 12 महीना नहीं जाती है, आस्ते आस्ते वो सारा संबंध टूट जाता है कि नहीं टूट जाता? तो इस दुनिया का ऐसा नियम है कि नहीं है कि एक बार किसी के साथ संबंध हो जाए और प्रेम हो जाए तो बाकी सारे संबंध जो कितने भी गहरे संसार के होते हैं माता पिता आदि के, वो सब आस्ते आस्ते आदमी उनसे दूर होता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक ऐसे ही जब भगवान की कथा सुन के उनके साथ प्रेम हो जाएगा, उसके साथ संबंध हो जाएगा, तो संसार के संबंध आस्ते आस्ते कम होने लगेंगे। एक समय संसार के संबंध कम करने ही है संसार से, तो उसको कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित किया जाए। और भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का जो तरीका, जो रास्ता बता रहे हैं नारद मुनि, वो भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान की अवतार कथा का श्रवण करना चाहिए। तो ये कथा का श्रवण हमारा भगवान से प्रेम बढ़ाएगा तो संसार के प्रेम कम हो जाएंगे। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान कृपा करके, करुणा करके अवतार इसलिए लेते हैं कि संसार के लोग, आपने जैसे कहा कि घर परिवार के मोह में बंध गए हैं, पुत्र मोह, पत्नी मोह, धन मोह, घर मोह, व्यवहार मोह, इसमें बंध गए हैं ना। तो भगवान कहते ठीक है, मैं इस धरती के ऊपर जाऊंगा और कहूंगा कि जो तुम्हारे रिश्ते तुमने संसार में बना रखे हैं, जो तेरे लिए मोह के बंधन है, वही रिश्ते तुम मुझसे बना लो, मेरे को बेटा बना लो, मेरे को मित्र बना लो, मेरे को पुत्र बना लो, मेरे को पति बना लो। जब वही संबंध मुझसे कर लेंगे संसार के लोग तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो संबंध अब संसार से है, जो हमको मोह में बांध के रखा है, क्योंकि ये संसार का संबंध सदा रहने वाला तो है नहीं, इस संसार का जो हमारा घर परिवार का जो आपस में संबंध है, ये कैसा है शास्त्र की दृष्टि से? ये संबंध ऐसा है कि यहां से ट्रेन में आप चढ़ के बेंगलोर जाएं तो बहुत से लोग आपके साथ बात करते हैं, मिलते हैं, कुछ आपस में साथ खा लेते हैं, दो घंटे बात भी कर लेते हैं, जैसे स्टेशन आती है हर एक उतर के अपने अपने रास्ते चला जाता है। ऐसे होता है कि नहीं होता है? ट्रेन में बहुत से लोगों से हम मिलते हैं, बात करते हैं, खाते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं, कुछ फोन नंबर भी लेते हैं, लेकिन उतरने के समय हर एक अपना अपना रास्ता लेता है। वो दो चार घंटे की या 15 घंटे या 25 घंटे की सफर होता है, लेकिन इस संसार में 50-60-70 साल का सफर ऐसा है, एक ऐसी एक यात्रा है जिसमें कुछ लोग मिलते हैं आपस में। अब गाड़ी में कौन आपके साथ मिलेगा आपको पता तो नहीं है, जो मिल गया उससे बात करनी है। ऐसी संसार में आपको पता नहीं है कि आपके घर में कौन आएगा, कौन बेटा बन के आएगा, कौन भाई बन के आएगा, इसका भी आपको पता तो नहीं। ये भी तो रात हम कह रहे थे आपको, देव नेत्रेण कर्मों के अनुसार भगवान के दृष्टि से कौन कहां जाना है। कोई किसके घर में बेटा आता है तो सुख देने के लिए आता है, कोई बेटा बदला चुकाने के लिए आता है। हाँ, ये तो शास्त्र में लिखा है, महाराज वेन रात को आपको बताया आया था तो पिता बहुत परेशान और दुखी होकर घर छोड़ के चला गया। क्यों घर छोड़ के चला गया? कि ऐसा बेटा जो कोई शत्रु होता है, बहुत सा रिश्तेदार संबंधी दुख देने के लिए आते हैं। एक बहुत पुरानी कथा हमने सुनी, एक साधु को पूछा कि आप साधु कैसे बन गए? बोला साधु में कैसे बन गए आप पूछते हैं तो, हम दो मित्र थे, बहुत फ्रेंड थे अच्छे, हमने अपने देश से बाहर पैसा कमाने के लिए चले गए विदेश में, 2-4 साल रहे, बहुत धन पैसा कमाया, वापस जब आ रहे थे अपने रास्ते गांव में तो एक जगह हम रुके तब मेरे दिल में बेईमानी आई कि आधा आधा पैसा करना पड़ेगा क्योंकि दोनों मित्र हैं, तो मैंने उसके लिए भोजन लेने गया था उसमें विष मिला के दे दिया। वो उसके लिए वो मर गया, मैं डॉक्टर से सर्टिफिकेट भी ले लिया और रोते हुए अपने गांव में आया कि मेरा मित्र मेरे साथ 4 साल रहा, ये 50,000 रूपये इसके हिस्से की आप ले लो। मैंने तो डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन बच नहीं पाया। बड़ी वहां जाके अपने मित्र के लिए सहानुभूति बता के रो रहा है, 50,000 उसके 50 लाख कमाए थे उसमें से 50,000 दे दिए, अब बस के पास बहुत धन हो गया, पैसा हो गया, अपना बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया, विवाह कर लिया, बेटा पैदा हुआ तो बड़ा खुश हो गया बेटे के लिए, 3-4-5 साल का बेटा हुआ, पढ़ने के लिए स्कूल भेजा, बेटे को बीमारी हो लग गई, बेटा जब बीमार हो गया तो उसके इलाज के लिए देश के अंदर बहुत बोला मैंने खर्चा किया, लाखों रुपए मैंने खर्चे किए, बाहर ले गया उसको विदेश में इलाज कराने के लिए, अब कहीं से इलाज नहीं लग रहा है, मैं घर में बैठा हूँ, सारा पैसा उसके इलाज के ऊपर जब लगा दिया तो एक दिन सुबह वो बेटा उठ के बैठ गया। मैंने कहा अब ठीक हो गया होगा। मैंने कहा बेटा इतना मैंने तेरे ऊपर इलाज कराने के ऊपर, तेरे स्वास्थ्य के ऊपर मैंने ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा किया, अच्छा हुआ आज तुम ठीक हो गए। तो बेटा मेरी तरफ देख के मुझे कहता है तुम मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ, मैं तेरा वो मित्र हूँ जिसको तुमने विष दे के मारा था, इतना तुमने मेरा पैसे हिस्से का लिया था और ब्याज के साथ अब मैं चुकतू तुमसे चुकाया है, अब वापस जा रहा हूँ। और तब उसने कहा मैंने जब ये अनुभव हुआ मेरे जीवन का तब मैंने कहा इस जीवन में ये सारे बंधन दुख देने वाले हैं, तब से मैं साधु बन के यहाँ भगवान का भजन कर रहा हूँ अब कि एक गलती हो गई इससे कैसे निस्तारा हो जाए। तो ऐसे भी नहीं है कि संबंधी सारे सुख देने वाले होते हैं। एक स्त्री पुरुष में बहुत ज्यादा झगड़ा होता था, रोज रोज लड़ते थे। एक पंडित जी को आकर जाके पूछा कि हम आपस में लड़ते क्यों हैं? बोला इससे पहले जन्म में तुम कौआ था और ये बेचारी गाय थी, इसके ऊपर एक बहुत जरा वूंड जख्म था, तुम इसको रोज चूंच मारते थे, जब तू उधर चूंच मारते थे अब तेरे को ये चूंच मार रही है, अब तेरे को सोना अब तुमने पहले किया है, अब तुम भुगत हो। तो इस संसार के अंदर जो हमारे संबंध होते हैं ये सुख देने के लिए सदा हो ये संभव नहीं है। घर के अंदर जो रिश्तेदार होते हैं वही सबसे ज्यादा इस दुनिया में दुख देते हैं, अगर घरों के अंदर देखो बाहर के लोग इतना दिन नहीं देते। तो इसका मतलब वेण महाराज के दुख से उसका पिताजी राजपाट छोड़ के चला गया, जाके साधुओं का संग किया। तो ये जरूरी नहीं सब कुछ बेटे बहुत सेवा करने वाले होते हैं, जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे के ऊपर बिठा के तीर्थ यात्रा कराने भी जाते हैं, ऐसे भी पुत्र होते हैं, वो भी इसलिए करते हैं कि उनको ये चुकाना होता है कर्जा, किसी का हमको लेना देना होता है वो पूरा करने के लिए संसार में आते हैं, किससे हमने कुछ लिया है किससे दिया है, जिसे दिया है उससे लेते हैं और जिससे लिया है उसको, जिसको दिया है उसे लेते हैं और जिसे लिया है उसको देना पड़ता है। ये संसार इस प्रकार का एक लेने देने का स्थान है। तो फिर इसको स्वप्नवत समझना चाहिए। स्वप्नवत का मतलब जब सुबह जागते हैं तो सपने के इकट्ठे किए हुए चीजें तो काम किसी नहीं आती है। रात को सपने में हमने देखा कि हमारे पास सोने का पहाड़ है, लेकिन उठने से सुबह घर में तो पहाड़ नहीं होगा। तो ये सारा एक स्वप्न समझना चाहिए, ये स्वप्न की सृष्टि है इस दुनिया की। स्वप्न रात को 5-7 घंटे में हम देखते हैं और ये 50-60-70-80 साल में स्वप्न देखते हैं, लेकिन है स्वप्न क्योंकि इसका असली स्वरूप है ही नहीं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए भगवान की कथा के द्वारा भगवान से संबंध स्थापित कर लेना चाहिए। जैसे ही भगवान से संबंध स्थापित कर हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, तो संसार के संबंध रहेंगे। इसलिए इसके बाद वाले श्लोक को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि नारद बुद्धिमान डॉक्टर है, इलाज बता रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं रहा है जो संभव नहीं है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावना अमृत संघ संस्था का उद्देश्य है ग्रस्तों को श्रीमद् भागवत और भगवद गीता सुनने का मौका दे। ऐसा ही रास्ता यहां बताया गया है कि कृष्ण कथा सुननी चाहिए, इसलिए कृष्ण भावना अमृत संघ में भगवद गीता और भागवत के ऊपर सत्संग होता है और ये पुण्य श्रवण कीर्तन है, यही सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य की प्राप्ति कौन सी पुण्य होता है, ये भारतवर्ष इसलिए पुण्य भूमि है क्योंकि यहां पुण्य कथा का श्रवण कीर्तन होता है, इसलिए भारत पुण्य भूमि है। बाहर पाश्चात्य देशों में ये भगवत कथा सुनने को कहीं नहीं मिलती है, दुनिया के किसी कोने में भी, इसलिए भारत को पुण्य भूमि कही गई है। अभी तो ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं 50 साल पहले हर गांव में हर मंदिर में हर रोज कथा हुआ करती थी, सारे लोग सुबह उठते थे, पहले घर से निकल के भगवान के मंदिर का दर्शन करते, काम को जाते थे, शाम को नहा धोकर कथा सुनने जाते थे, हर गांव में कथा रोज हुआ करती थी। आपके यहाँ पल होती थी 50 साल पहले, ऐसा होता था कि नहीं होता था? गांव में सदा कोई साधु संघ आते थे, कथा होती रहती थी। वो कथा होने से आदमी को पता लग जाता है कि सत्य क्या है और सत्य असत्य क्या है, फिर व्यवहार कैसे करता था। यावद अर्थम उपासीनो देहे गेहे च पंडिता वृत्तो रक्तवत तत्र निर्लोके नरताम्य सेत. While working to earn his livelihood, as much as necessary to maintain body and soul together, one who is actually learned should live in human society, unattached to family affairs, although externally appearing very much attached. लिखने की लैंग्वेज देखो कितनी बुद्धिमानी है. कमाना पड़ेगा, जगर विवाह किया है तो कमाना पड़ेगा, कुटुंब पालना पड़ेगा, पालो, लेकिन इतना ही कमाओ जितने की जरूरत है. जितनी आवश्यकता है उतने ही कमाने का प्रयास करना चाहिए, उससे ज्यादा अधिक प्रयास. प्रहलाद कहते अधिक प्रयास न करो. तो फिर भैया क्यों नहीं करें? बोला जो तुम्हारे भाग में होगा उतना ही मिलेगा. बोला कैसे? बोला कोई दुख के लिए प्रयास करता है संसार में? कोई आदमी इसलिए जाके भगवान के मंदिर में कभी किसी ने प्रार्थना की है कि भगवान हमारे घर के अंदर किसी को कैंसर हो जाए? बोला है किसी ने? कोई पेड़ से गिर जाए, उसका पांव टूट जाए, ऐसी किसी ने प्रार्थना की है? नहीं की है ना दुनिया में. प्रहलाद महाराज के कहे कोई दुख के लिए कभी प्रार्थना नहीं करता है. सबके घर के ऊपर दुख अपने आप आता है कि नहीं आता है? सबके ऊपर दुख अपने आप आता है कि नहीं आता दुनिया में? तब प्रहलाद महाराज कहते जैसे दुख तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हारे घर के ऊपर अपने आप आते हैं, ऐसे तुम्हारी सुख और संपत्ति भी अपने आप तुमको मिलनी है. तुम इसके लिए अधिक प्रयास करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जब दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता तब भी दुख भोगना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो फिर सुख के लिए इतना अधिक प्रयास करके अपना व्यर्थ समय मत गुमाओ, भगवान के भजन को मत भूलो. ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं. चैतन्य महाप्रभु के पास रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे 9 साल के बालक गए, कहा मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं. बोला नहीं, अभी तुम अपने घर में जाओ और घर के अंदर ऐसे काम करो घर वालों को लगे कि तुम घर की सेवा करना चाहते हो, लेकिन मन तुम्हारा सदा कृष्ण में लगा रहना चाहिए. घर छोड़ना नहीं है लेकिन भगवान को भूलना नहीं है. और ये भी समझना है कि भगवान से हमारा संबंध नित्य है, सदा के लिए वही हमको काम आएगा. ये संबंध हमने स्वयं ने बनाए हैं, भगवान ने हमको ये संबंध दिया, इसलिए हमारा दायित्व ये निभाना है. बच्चे को खिलाना है, पढ़ाना है, ये तो हमारा काम है, लेकिन मोह इसमें करके अटक नहीं जाना है. ये प्रेम भगवान से करना ये हमारा कर्तव्य है और वो हमारा लक्ष्य है. भगवान की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, कुटुंब परिवार को पालना हमारा कर्तव्य है. कर्तव्य को छोड़ना नहीं है, लक्ष्य को भूलना नहीं. लोगों ने कर्तव्य को ही लक्ष्य मान के रखा, ये कैलकुलेशन गलत है. हमारा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, हमारा कर्तव्य है बेटे को पढ़ाना लिखाना, बेटे की शादी करना, ये हमारा कर्तव्य है, उसको ठीक तरह से निभाना चाहिए. लेकिन हमारा लक्ष्य ये नहीं, हमारा लक्ष्य भगवान के चरणों की प्राप्ति है. ये जो हमारा लक्ष्य है इसको नहीं भूलना चाहिए. कर्तव्य निभाते हुए लक्ष्य को कभी मत भूलो. ये मुख्य इसकी शिक्षा, ये लाइन है इसकी शिक्षा ये है. नारद जी कहते अपना कर्तव्य निभाओ. एक राजा था, राज में बहुत जरा परेशानी होने लगी, अपने गुरु के पास. बोला महाराज ये राज मुझसे नहीं चलता है. बोला क्यों नहीं चलता है? बोला बहुत बड़ी समस्या है, परेशानी है. बोला फिर क्या करोगे? बोला कहीं नौकरी करके मैं अपना निर्वाह कर लूंगा. ये राज महाराज आप ले लो गुरुजी, मैं आपको अर्पण करता हूँ. गुरुजी ने बोला तुमने राज मेरे को दिया? बोला हाँ दे दिया. आप क्या कैसे जियोगे? बोला नौकरी करूंगा. तो बोला मेरी नौकरी करो, जाओ राज चलाओ. अब तुम्हारा राज नहीं, राज मेरा है, अब तुम जाके चलाओ. अब राज चला रहा कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जिसका मालिक है वही देखेगा. तो इस दुनिया में जब हम घर के मालिक बनते हैं तब दुखी बनते हैं. अब घर में भगवान को बिठा दो और बोले घर तुम्हारा है और हम तुम्हारा सेवक हैं, इसको चला रहे हैं, तो दुख दूर हो गया. जब मालिक बनते हैं तब दुखी होते हैं संसार में, सेवक बनने से दुखी नहीं होते. बड़ा सदावन बड़ा दुख बावन, छोटे का दुख दूर. ये कहावत है, बड़ो जितना बड़ा बनोगे उतना ज्यादा दुख मिलेगा. छोटा बनने से दुनिया में आदमी सुखी हो जाता है. तो भगवान है बड़ा सबसे, उसी को उसी से उसी के छोटे सेवक बन जाओ. घर का मालिक कौन है? भगवान है. कल हमको हमने आपको बताया था, गृहस्थ ने सब चीजों को कहा घर भी भगवान का, परिवार भी भगवान का, मैं इनकी सेवा कर रहा हूं लेकिन मेरा भगवान है. भगवान को अपना मान लो, बाकी सब भगवान का है, तो आपका दुख दूर हो गया. दुख सिर्फ ममता, दो शब्द कहते हैं, वेद कहता है मम ममेति इति विष, इस दुनिया में मैं और मेरा ये पॉइजन है। मैं और मेरा किसी चीज को दुनिया का मान लेना ये विष है, यही संसार में झगड़े का कारण है, मेरा तेरा। और भगवत गीता में झगड़ा कहां से शुरू होता है, जब धृतराष्ट्र कहते माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के, मेरे और तेरे दो अलग कर दिए। जब मेरा और तेरा इस दुनिया में होता है तब झगड़ा होता है, भगवान का है तो कोई झगड़ा नहीं। जब हमारा है ही नहीं तो झगड़ा क्यों करेंगे। तो मम ममेति इति विश्व इदम न मम इति अमृत, ये मेरा नहीं है। ये किसी को समझ में आ जाए तो वो अमृत पी लेता है। इसलिए जितने भी हमारे वैदिक यज्ञ होते हैं उसमें जब आहुति डालते हैं तो कहते हैं इदम इंद्राय नमः इदम न मम, ये इंद्र को अर्पण करते हैं, हमारा नहीं है। इदम न मम सारे मंत्रों में लगता है। नमः का मतलब क्या है, नमः मेरा नहीं है, भगवान आपका है, नमस्कार का अर्थ ही है। नमो नमः, नमः मेरा नहीं है आपका है, नमस्कार का मतलब ये शरीर भी भगवान मेरा नहीं है, आपने दिया है, कैसे आपकी सेवा में लगाऊं। जब सनातन गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से वृंदावन से मिलने गए थे जगन्नाथपुरी में, तो रास्ते में जगह एक जगह पानी ऐसा पिया, नहाए ऐसा, तो सारे शरीर के ऊपर कुष्ठ रोग जैसे बहुत बहुत जहां से पीप निकले, खून निकले, ऐसे जख्म हो गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम के कारण सनातन गोस्वामी से आलिंगन करते थे, गले मिलते थे, तो उनके शरीर के ऊपर लगा हुआ सारा पीप मल वो महाप्रभु के गोरे शरीर पे लगता। सनातन गोस्वामी का ये तो बड़ा अपराध हो रहा है मुझसे, मैं महाप्रभु, तो उन्होंने विचार किया कि जगन्नाथ रथ यात्रा जब निकलेगी तो मैं रथ के आगे अपने शरीर को डाल दूंगा तो शरीर समाप्त हो जाए, इससे अच्छा है। चेतना महाप्रभु उनके मन के भाव को समझ के कहते हैं सनातन गोस्वामी ये तेरा शरीर नहीं है, तुमने मेरे को अर्पण किया, इसको तुमको नाश करने का अधिकार नहीं है, ये मेरा शरीर है, तुमने तुम्हें अपने आप को मेरा समर्पण किया है, मेरे शिष्य हो तो तेरा शरीर तुमने मुझे दे दिया, अब इस शरीर के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, मुझे इस शरीर से बहुत काम लेना है, तुम शरीर को ऐसे खराब नहीं कर सकते हो। तो ये शरीर हमारा नहीं है, भगवान का है, भगवान इससे क्या सेवा लेना चाहता है। ये चेतना महाप्रभु ये शब्द कहते हैं सनातन गोस्वामी को, बहुत सुंदर शब्द कहते हैं, ये शब्द इतना योग्य पात्र हो तुम्ही भक्ति प्रवर्तायते। चेतन महाप्रभु कहते आप योग्य पात्र हो, आप एलिजिबल पर्सन हो, हा? यू आर फिट टू प्रोपेगेट द कल्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, आप भक्ति के प्रचार के लिए योग्य पुरुष हो। क्रमे सभी तत्व सुन कही बे तुम्हें, मैं इसलिए आपको ये सारी शिक्षा देता हूं कि तुम इस काम के लिए मैंने तुमको चुना है, तुम्हारे शरीर से मैं संसार के अंदर भक्ति का प्रचार करना चाहता हूं। तो सनातन गोस्वामी हमारे सिद्धांत के आचार्य हैं, जितने भी सिद्धांत भक्ति के हैं उनको स्थापित सनातन गोस्वामी ने किया। फिर चेतना महाप्रभु ने एक दिन उनको जैसे गले से लगाया उनका सारा रोग एकदम खत्म हो गया। केवल महाप्रभु को ये शिक्षा देनी थी कि शरीर से तुम अपने लिए मोह मत करो, लेकिन तुम्हारा शरीर जिसके लिए है उसकी सेवा में लगाओ, जिसके लिए शरीर है उसकी सेवा में लगाओ। तो यहां नारद मुनि कहते हैं कि घर परिवार के पालन पोषण के लिए कमाओ जरूर, और जितनी आवश्यकता है उतना मेहनत करके कमाना चाहिए, और सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी में भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। इस दुनिया में कारण क्या है दुख का, अटैचमेंट। अटैचमेंट को शब्द का यहां क्या लिखा है, यावद अर्थम उपासिनु देहे गेहे च पंडितः, बुद्धिमान वो है विरक्तो रक्तवत तत्र। इसका उदाहरण ऐसे है, अभी आप घर से यहां तक आए ना, तो खुली आंखों से आए कि आंखें बंद करके आए? खुली आंखों से आए ना, तो कितने लोग देखे रास्ते में आपने? कुछ लोग देखे होंगे ना, बहुत से लोग रास्ते में आएंगे, कुछ गाड़ियां देखी होंगी, लेकिन आपको कुछ याद है अभी नहीं है ना। लेकिन रास्ते में जाते हुए आपने अपनी गाड़ी का नंबर देखा होता जाते तो आंख में चपक जाता कि नहीं चपक जाता? पर अपने बेटे को देखा हुआ जाते देखा होता तो आंख में चपक जाता कि नहीं जाता? तो देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चपकने से फर्क पड़ता है। आंख खुली से दुनिया में चलते हैं, रोज हजारों लोगों की शक्ल देखते हैं लेकिन कुछ भी याद नहीं है। लेकिन अचानक कोई अपना पुराना कोई जान पहचान वाला दिख गया तो आंख उधर अटक जाएगी, और अटक जाएगी हाँ कौन है कौन है, कहां देखा था कहां देखा था, फिर पूरी उसकी दुनिया याद आ जाएगी, वहां देखा था ऐसे उठे थे, फिर उससे बात करेंगे, फिर उसमें आसक्ति हो जाएगी। तो देखना मना नहीं है लेकिन उसके साथ बंध जाना मने है। बंध जाओगे तो दुख पाओगे। मेरा कह के बंद गए तो फंस गए, देखने का मन ही नहीं है। कान खुले हुए आते हो सुनते हो कितने लोग गा रहे हैं, उठ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन कोई आदमी आपकी बुराई करे आप कान से सुनो तो कैसे लगता है? और आपकी कोई प्रशंसा करे तो भी अटक जाओगे, दोनों फंस जाओगे। तो सुनना मना नहीं है लेकिन सुन के उन शब्द को पकड़ के दुखी होना ये मना है, और सुखी होना ये भी मना है। तो घर में भी ऐसे पालन पोषण करने की मना नहीं है लेकिन मोह करके फंस जाने की, इतना मोह हो जाए कि दुकान पे ही नहीं जाऊंगा, बस मैं इस बेटे को गोद में लेके बैठा रहूंगा तो खाओगे कहां से? तो इतना मोह तो आपको भी नहीं करना पड़ता, छोड़ के जाना ही पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? घर के जिनसे हमने प्यार है उनको भी छोड़ के जाना पड़ता है 8-10 घंटे। तो ये एक शिक्षा घर में मिल रही है कि कर्तव्य करते हुए भी दिखे ऐसे कि आप उन सब के साथ स्नेह करते हो, आप इन सब में मोह रखते हो, लेकिन अंदर में आप ये समझो कि ये मोह सदा के लिए रहने वाला नहीं है, ये दुख का कारण है। इसलिए हमें प्रेम भगवान से करना है। इसके भावार्थ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ आइडियल फैमिली लाइफ। काम करो, पालन पोषण करो, दिखावे में सबसे प्रेम करो, लेकिन असल में प्रेम भगवान से करो, असली प्रेम भगवान से करो। भगवान को प्रार्थना करो कि इन सबका मैं देखभाल ठीक कर सकूं लेकिन आपको न भूलूं कभी। ये सच्ची दिल से करना है, ऐसे नहीं झूठ मूठ का करना है दिखावा, लेकिन सही जो असली। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज द पिक्चर ऑफ आइडियल फैमिली लाइफ। When Sri Chaitanya Mahaprabhu asked Ramananda Rai about goal of life, Ramananda Rai described in different ways according to the recommendations of the revealed scriptures. And finally, Sri Ramananda Rai explained that one may stay in his own position, whether Brahman or Shudra, Sannyasi or whatever, but one must try to inquire about life of goal. Athato Brahma Jigyasa. अपने घर में रहे चाहे गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए जो जिज्ञासा करता है उसको सुखी रहने का अधिकार है। तो गृहस्थी बहुत सारे साधु संसार में हुए हैं, जितने भी गुरुजन जिन्होंने भगवान को भी शिक्षा दी है सारे गृहस्थी थे। सांदीपनि मुनि गृहस्थी था, महाराज वशिष्ठ की अरुंधति पत्नी थी, भगवान राम ने वहां शिक्षा ग्रहण की। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ भगवान का भजन नहीं कर सकते, बहुत से ग्रस्त में रहकर भगवान के परम भागवत भक्त हुए हैं। हाँ, विदुर ग्रस्त में रहते हुए भी ऐसा भक्त था कि भगवान उसके घर में जाके भोजन करने के लिए चले गए। तो ऐसा अपने घर का वातावरण बनाओ कि भगवान के भक्त बनो, ग्रस्त में रहकर भक्त बनना कोई मुश्किल नहीं है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए करना ये पड़ेगा कि भगवान से प्रेम बढ़ाना पड़ेगा, संसार का सिर्फ मर्यादा पूरी करनी पड़ेगी। संसार में प्रेम होता ही नहीं, संसार में केवल काम और मोह है, प्रेम शब्द है ही नहीं। प्रेम और काम में दिन रात का अंतर है, प्रेम सोना है, काम लोहा है। प्रेम करने का अर्थ है जिससे हम प्रेम करते हैं उसको सुखी देखना चाहते हैं, और काम का अर्थ है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हमें क्या सुख मिलेगा। दोनों में दिन रात का अंतर है। जैसे माँ बच्चे से प्रेम करती है, बच्चे को सुखी देखना चाहती है, अपने आप को दुख उठाने में कोई परवाह नहीं, ماں بچے بچے کے پالن پوشن کے لیے دکھ اٹھاتی ہے کہ نہیں اٹھاتی؟ تو یہ پریم کرتی ہے اس لیے. لیکن ہم سنسار سے کہتے ہیں پریم کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا لابھ ہوگا، ہم کو اس سے فائدہ کیا ہوگا. یہ پریم نہیں ہے، یہ موہ ہے. یہ کام ہے کہ میری اچھا کی پورتی ہو اور بھگوان تیری اچھا پورن ہو. سادھو کی پرارتھنا ہوتی ہے بھگوان تیری اچھا پورن ہو، تو جو چاہتا ہے وہ پورا ہو. میں تو سمجھتا نہیں ہوں کہ میرا بھلا کس میں ہے، میں کیسے تم سے مانگ لوں کچھ. میرے لیے جو اچھا ہے وہی تم کرو، تیری اچھا پورن ہو. میری اچھا کے اوپر دھیان نہیں دینا کیونکہ میری تجھ اچھا ہوگی، لیکن تمہاری جو اچھا ہو وہ پورن ہو. یہ سادھو کی بھاشا ہے کہ بھگوان کی اچھا ہوگی. کوئی کہتا ہے ہمارے پاس آئیں گے کرشن کی اچھا ہوگی تو آئیں گے، بھگوان کی اچھا ہوگی تو آئیں گے. ہماری اپنی اچھا سے آئیں گے تو پھر ہمارا آسکتی اور موہ بڑھ جائے گا. مانو جنم میں اگر ہم نے اپنے جیون کے لکش کو پراپت کرنے کا پریاس نہیں کیا تو پھر ہم پشو کے استر کے اوپر رہ جائیں گے. پشو کا استر کیا ہے؟ اس دنیا میں سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور دنیا کے سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ کھانے کے لیے کھانا ہے، اس کے لیے کما رہے ہیں، کھانے کے لیے کما رہے ہیں. پھر کما لیا، کھانا ہے، تو پھر کھانا پکا کے کون دے گا؟ تو پھر ویچار آتا ہے کھانا پکانے کے لیے گھر والی چاہیے. گھر والی کی ضرورت پڑے گی تو گھر چاہیے بھائی، گھر والی ہوگی تو گھر چاہیے نا. تو دوسرا کام تو یہ ہو گیا، ایک کھانا ہے، ایک گھر ہے، گھر والی، یہ دو کام ہو گیا. تو گھر اس لیے بنایا کہ کہیں سونا پڑے گا، کھانا ہے تو کہیں سونا پڑے گا، کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہونا چاہیے. تو یہ دو کام ہو گئے سر. دنیا کام کیا کر رہی ہے؟ کھا رہی ہے اور سو رہی ہے. اور گھر والی ہے تو بچے پیدا ہونے ہیں، تو پھر بچوں کو پالن پوشن کرنا ہے، تو یہ تیسرا کام کر رہے ہیں. اور پھر پتہ نہیں بچے کو آگے چل کے کہیں پڑھائی کا خرچہ لگے گا، کہیں بیمار ہو جائیں گے تو اسپتال میں بل دینا پڑے گا، یہ بھے ہوتا ہے. اس کی رکشا کرنے کے لیے کچھ پیسہ کٹا کرنا پڑے گا. اگر زیادہ پیسہ کٹ کے کٹا کر کے گھر میں رکھیں گے تو تالا لگانا پڑے گا باہر سے. ایک زمانہ تھا گھروں میں تالا نہیں ہوتا. تالے کا ارتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی کے اوپر وشواس نہیں کرتے. تالا اوشواس کا چنہ ہے. تالا لگانے کا مطلب وشواس نہیں ہے کسی پر. ہم چھوٹے بچے تھے، ہمارے گھروں میں تالے نہیں ہوتے تھے، کیول لکڑی ایسے رکھتے تھے کہ اندر کوئی کتا گدھا گائے نہ جائے. لیکن ابھی کتے گدھے گائے سے اتنا ڈر نہیں جتنا آدمی سے ڈر ہے. کتے گدھے گائے سے اتنا اب ڈر نہیں ہے جتنا آدمی سے ڈرتا ہے آدمی. پہلے جنگل میں آدمی شیر چیتے سے ڈرتا تھا، اب لوگ باہر آدمی سے ڈرتے ہیں کہ کوئی لوٹ نہ جائے. شیر چیتے سے اتنا ڈر نہیں جتنا آدمی سے دنیا میں لوگوں کو ڈر ہونے لگا ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چار چیزوں میں دنیا ساری لپت ہے. کھانے کے لیے کچھ کمانا ہے، سونے کے لیے گھر بنانا ہے، بھوگ کے لیے استری پرش کو ساتھ رہنے کی اچھا ہوتی ہے، اور پھر اپنی رکشا کے لیے کوئی نہ کوئی سادھن جٹانا ہے. تالا لگانے کی ضرورت ہے، اور زیادہ دھن ہو گیا تو ایک چوکیدار رکھنا پڑے گا باہر. تو اپنی رکشا کے لیے کوئی پریاس تو کرنا ہی پڑے گا نا. تو چار ہی چیزیں سب کچھ کر رہے ہیں دنیا کے لوگ یا کچھ اور کر رہے ہیں؟ یہ چار ہی کام کر رہے ہیں نا، یہ تو پشو بھی کر رہا ہے. پھر آپ میں کون سی وشیشتا ہو گئی؟ آسٹریلیا میں ایک جگہ پربھوپا جی دیکھا کہ سمندر کے کنارے گھومتے ہوئے ایک آدمی رسی میں دھاگا، دھاگے کے اندر کچھ باندھا ہے، سمندر میں ایسے کر رہا ہے. پربھو نے کیا کر رہا ہے؟ بولا مچھلی پکڑ رہا ہے. بولا یہ تو بگلا پکڑ لیتا ہے، جا کے کھڑا ہو کے ایسے کھا لیتا ہے. بگلے کو مچھلی پکڑنا ہے، وہ اپنے آپ پکڑ لیتا ہے، اس کو کچھ پریاس نہیں کرنا پڑتا ہے. یہ مانو ہو کہ وہی بگلے جیسا کام کیوں کر رہا ہے؟ ہاں یہ مانو بنا ہے تو کیا مچھلی پکڑنے کے لیے بنا ہے؟ اتنا بڑا مانو کا شریر مچھلی پکڑنے میں ویرت گنوا رہا ہے، اس سے تو بگلا کام کر سکتا ہے. بگلا سمجھتے ہو نا؟ نہیں بک، ہاں بک کیا کہتے ہیں اس کو، کرین، جیسے کھڑا ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے، جیسے سمادھی نہیں ہے لیکن مچھلی لے کے کھائے لے گا ایک دم. اس کو پکڑنے کے لیے دھاگے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کچھ ایسے جائے گا کھا کے آ جائے گا. تو جب اتنا چھوٹا کام کرنے کے لیے ایک اوکرین یہ کام کر سکتا ہے تو تم مانو ہو کہ یہاں کھڑا ہے صبح سے شام تک ایسے کر رہا ہے، کیا انسان کی زندگی کا بیکار میں گوا رہا ہے؟ تو آدمی پشو کے استر کے اوپر سارے کام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی سمسیا ہے کہ ہمارا استر پشو کے استر سے اوپر نہیں اٹھ رہا ہے. یہ سد شاستر ہم کو پشو کے استر سے اوپر اٹھانے کے لیے ہیں. एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी इतनी, कई जन्मों से कहां से पशु का इस तरह आया कि बहुत पशु जूनियों से हम घूम के आए और उनका हमारे ऊपर अभी इम्प्रेशन इतना स्ट्रांग जमा हुआ है कि वहां से निकलना मुश्किल हो गया। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आप देख के कहते हैं बिल्कुल गदा लग रहा है, बोलते हो कि नहीं रखते हो, क्योंकि गदे जैसा काम करता है। तुम्हारी समझ में आता है गदा लग रहा है तो क्या भगवान उसको गदा नहीं बना सकता क्या? बना देगा अगली बार, क्यों चिंता करते थे? तो मानव बन के मानव जैसा कर्तव्य करना चाहिए ना, पशु के स्तर के ऊपर क्यों रहना चाहिए? कभी कभी किसी आदमी को देखते हम कहते हैं देवता पुरुष है, देखो कितना उदार है। इसका मतलब हम भी समझते हैं कि देवता कैसे होने चाहिए, हमको भी समझ में आता है कि ये सारा दिन भौ 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 कुत्ते की तरह बकता रहता, बोलते हो कि नहीं होते? आपकी भाषा में अपने बच्चों को कभी बोलते हैं कुत्ते की तरह क्यों बिल्ली की तरह झगड़ रहे हो? एक साधु के पास एक गृहस्थी जाता था, साधु कहता था मानव बन जाओ। एक दिन अपनी पत्नी के साथ गया, तब भी उसने कहा मानव बन जाओ। पत्नी को क्रोध आया कि हमको ये कर समझता क्या है, हमको बोलता है मानव समझ जो बन जाओ, कहता आप महात्मा के पास जाते हो। वापस गया, बोला महाराज मेरी घरवाली लड़ रही है, आपने क्यों बोल दिया मानव बन जाओ? बोला ये चश्मा है, ले जा घर में जाके पहनना, फिर मेरे को बताना समाचार। उसको एक गिलास चश्मा दे दिया, उसने घर में जाते ऐसे चश्मा पहना, ऐसे गया तो ऐसे देखा पत्नी आ रही है सामने, बहुत सुंदर लगी है, चश्मा ऐसे पहना तो लगा के शेरनी आ रही है। अब चश्मे जब शेरन चश्मा नीचे उतारे तो सुंदर अपनी पत्नी लग रही, चश्मा लगाए तो शेरनी है, बड़े बड़े नाखून है, दांत निकाल गए देख रही। पत्नी को बोला तुम जरा चश्मा लगाओ, तो पत्नी ने चश्मा लगाया, सुंदर पति को चश्मा लगा के देखती है बैल जैसा कर रहा है, ऐसे कर रहा है, नीचे उतारे तो बड़ा सुंदर लग रहा है। इतनी देर में सामने से बच्ची आई, बेटी इधर आओ, तो चश्मा में देखते बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं इधर कूद रही है उधर कूद रही है। चश्मा उतारे तो बेटी लग रही है, बेटे को देखा बंदर की तरह ऊपर नीचे कूद रहा है, ये तो बंदर देख रहा है। चश्मे से देख के एक दूसरे को देखा फिर नीचे रखा, महाराज जी आपका चश्मा वापस लीजिए। क्यों? बोला हमको पता लग गया कि आप हमको क्यों कहते हैं मानव बनो, देखने में कि हम मानव लगते हैं लेकिन काम हमारे पशु जैसे हैं, अभी तक वो शक्ल किसी को दिखती नहीं है। एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटीज बहुत हमारे के अंदर है, पशुवत हमारा जीवन होता जा रहा है, तो मानव बनना बहुत मुश्किल है इस दुनिया में। तीन देशों के बहुत बड़े विज्ञानी जा रहे थे, एक दूसरे से कह रहे थे अमेरिका के हमने स्पेसशिप ऐसी बनाई है आकाश में बहुत ऊपर तक उड़ जाती है, यूरोप के लोग कह रहे हैं हमने बहुत ज्यादा सबमरीन बनाई है जो पानी में नीचे समुद्र के तले तक चली जाती है। तो भारतवासी से पूछा महात्मा आपने क्या बनाया? बोला आकाश में तो पशु पक्षी उड़ जाते हैं और समुद्र के अंदर तो मछली नीचे तक चली जाती है, हम तो दो पांव से मानव बन के धरती के ऊपर चलने का प्रयास कर रहे हैं, ये काम बहुत सबसे मुश्किल है। इतना उड़ना मुश्किल नहीं है, इतना पानी है तो ये तो पक्षी ऊपर उड़ जाता है आसमान, देखा है कितना ऊपर उड़ती है, कुछ पड़ी पक्षी बहुत ऊपर आकाश में उड़ते हैं, ये तो आकाश में तो पक्षी उड़ रहे हैं नीचे तो पक्षी, तो इंसान बन के धरती के ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। हम इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रयोग कर रहे हैं कि इंसान कब हम बनेंगे, इंसान बनना बहुत मुश्किल है। जो दूसरे की पीड़ को नहीं जानता है उसको मानव कैसे कहेंगे, जो दूसरे को दुख को नहीं समझता है वो मानव थोड़ी। हम तो दूसरे को दुख देने में बहुत बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मानवता का स्तर, हमारा मानव जन्म हमको मिला क्यों है, इसके ऊपर कभी चिंतन करना चाहिए कि मानव जन्म हमको मिला क्या है, क्यों है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो मानव जन्म में शास्त्र को समझता है गुरुजनों के चरणों में बैठकर। एक और बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, ज्ञातयः पित्रो पुत्रा भ्रात्रः सुहृदो अपरे यद वदन्ति यद इच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः। एन इंटेलिजेंट मैन इन ह्यूमन सोसाइटी शुड मेक हिज ओन प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज very simple. If there are suggestions from his friends, children, parents, brothers, or anyone else, he should externally agree, yes, saying, yes, that is all right. But internally he should be determined not to create a cumbersome life in which the purpose of life will not be fulfilled. घर में कोई कहे ये करना है, हाँ हाँ ठीक, आप ठीक कह रहे हो, हाँ नहीं आप भी ठीक कह रहे हो, लेकिन करना वो चाहिए जो वो समझता है कि ठीक है. मुश्किल जिंदगी को और ज्यादा नहीं बनाना चाहिए. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, दो टाइम की रोटी तो घर में मिल रही है. अब घर वाली पड़ोसन के घर में गई और वहां देख के आई कि उसके घर कोई नई चीज आई है, समझ लो होम थिएटर आया है. अब वो आके कहती है अपने घर में होम थिएटर होना चाहिए. हाँ जरूर लाएंगे, लेकिन सोचे ये होम थिएटर मैं लाऊंगा कहां से, पैसा तो है नहीं, इसके लिए कहां से पैसा कमाऊंगा. अरे दूसरे के घर का देख के घर अपने में क्यों मुसीबत में डालो? असल में दूसरे के घर के अंदर कोई चीज देखते हैं उससे ज्यादा हमें दुख होता है. अरे उसके पास ये चीज आ गई, हमारे घर में आनी चाहिए. यही कुछ बच्चे कहते हैं हमारे घर में ये आना चाहिए, स्त्री कहती है हमारे घर में, दूसरे घर में देख के आते हैं, वो अपने घर में लाना चाहते हैं. आप दुनिया में लोग दुखी इसलिए नहीं है कि हमारे पास कुछ है नहीं, इसलिए दुखी है कि दुखी दूसरे के पास ज्यादा क्यों है. दूसरे के पास अगर ज्यादा होता है वो हमको बहुत ज्यादा दुखी करता है. उसका घर बहुत बड़ा है, हमारा घर छोटा है, तो हमारा घर बड़ा हाँ जरूर बनाएंगे, लेकिन क्या काय के लिए बड़ा बनाएंगे? कौन सफाई करेगा? फिर चार नौकर रखने पड़ेगा, सफाई भी तो करनी पड़ेगी ना बड़ा होगा तो घर बड़ा बनाया तो फिर और भी तो एक कम्बरसम लाइफ का मतलब है कि दूसरों की देखा देखी में अपने घर को बिगाड़ना नहीं चाहिए. बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि जरूरी क्या है. हाँ हाँ सबको करना चाहिए, लेकिन करना अपनी बुद्धि से चाहिए कि जिससे भगवान की प्राप्ति वाले लक्ष्य में कोई बाधा न पड़े. भाई मानो होम थिएटर लाना पड़ेगा तो धंधा करने के लिए दो घंटे और बैठना पड़ेगा ना, भागादौड़ी करनी पड़ेगी ना, नहीं मिलेगा कहीं से. आज हम बोलते हैं जितने लोग आपका गांव है अच्छा है, शांति लग रही है यहां. अब शहर के अंदर जाएं जितनी गाड़ियां कितनी चल रही है, जितनी गाड़ियां चल रही है ये सब उधार पे सबने ली हुई है, मालूम है, सब हायर परचेज पे ली हुई है. सबको 10-15 हजार रुपया महीने का देना पड़ता है और इस तरह पागलों की तरह इधर से उधर भाग रहे हैं और सारे ही भिखारी हैं, उधार पे लेके घूम रहे हैं और समझ रहे हैं हम बड़े आदमी हैं. मेरी एक आदमी ने भी गाड़ी पूरे पैसे देके नहीं लिए, सारे उधार पे वो ली हुई है. ये ऐसा ये अमेरिका का कल्चर है, घर में पैसे नहीं है और चीज लेके जाओ और सारी उम्र के लिए कर्जी रहो. कर्ज और मर्ज कहते हैं बीमारी को. कर्ज बहुत बड़ा मर्ज है, सबसे बड़ी बीमारी है उधार लेना दुनिया में, क्योंकि सुख से सोने नहीं देती है. चैन से कर्जी आदमी सो नहीं सकता है, मालूम है कि नहीं मालूम है? जो आदमी किसी से उधार लेता है वो कभी चैन से सो नहीं सकता है. बड़े से बड़ा लोगों का सबसे बड़ी बीमारी ये है, देखा देखी में घर का सारा सामान उधार पे लेके आए. अब हर महीने दो दो बाल निकालने पड़ते हैं, ऐसे कब पैसा देना है उसको, यहां से पैसा लाना है. इसलिए आस्ते आस्ते सब गंजे भी एडवांस में हो रहे हैं, ये पैसे से वो उधार पे लिए इसलिए दुख भोग रहे. तो सारे ही कंगाल हैं और क्या है, ये देखा देखी की वजह से हमने ऐसा. और गलती क्या कर दी? उधार पे गाड़ी रखी है, उधार के ऊपर टेलीविजन ले लिया है, उधार के ऊपर घर ले लिया है, लेकिन घर के अंदर 10 दिन का भोजन नहीं है. 10 दिन का भोजन बड़े आदमी के घर के अंदर नहीं है. आटा लाता है 10 दिन का, तब 10 दिन का आटा लाता है 10 किलो तब खाता है, लेकिन गरीब के घर में 12 महीने के लिए चावल पड़ा है, 12 महीने के लिए दाल पड़ी है. इस गरीब के लोग गरीब लोग पहले 12 महीने का लेके रखते थे कि नहीं रखते थे? लेकिन आज जाके किसी का बम्बई वाले किसी वाले के घर में जाके देखो 10 दिन का भोजन तो नहीं है, 10 गाड़ियां बाहर खड़ी है, गाड़ियां खाएगा क्या? भोजन का प्रबंध नहीं करते. उधार के ऊपर चीजें लेकर बहुत बड़ा नवाब बन के घूमते, इसको बोलते कम्बरसम लाइफ. ये कम्बरसम लाइफ है, ये बहुत बड़ा अपने आप के लिए बंधन में डाल दिया देखा देखी में. उसके घर में 2 गाड़ियां खड़ी है, हमारे घर में 3 होनी चाहिए, जरूरत है नहीं जरूरत है? आप अपने घर में कभी देख लो कि कितनी चीजें पड़े हैं, उसमें काम की कितनी है. जरूरत सबकी भगवान पूरी करती है, इच्छा सबकी पूरी नहीं होती है. नीड्स कैन बी मेट नॉट द डिजायर्स. आप दुकान के अंदर कभी जाओ तो मन करेगा ये भी ले लूं वो भी ले लूं, लेकिन थोड़ी देर सोचना कि इसकी जरूरत है क्या मेरे को, तो अंदर से जवाब आएगा जरूरत तो नहीं है, मैं इसलिए ले रहा हूं कि मैंने उसके घर में ऐसा देखा था. ऐसी बहुत सी चीजें घर में पहले से पड़ी है, आप देख लो घर के अंदर कैसी चीज, कितनी चीजें पड़ी हैं जो किसी काम की नहीं है। बहुत सी चीजें बेकार में पड़ी और फिर ला के इकट्ठी करते हैं। जिंदगी को कंबरसम नहीं बनाना चाहिए, इतनी मुसीबत वाली भी नहीं बनाओ कि भगवान याद ही ना आए। तो भगवान से संबंध कैसे होगा, जब भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के भक्तों के संग में कथा सुनेंगे, तब भगवान से हमारा संबंध स्थापित होगा। और जब संबंध स्थापित होगा तब भगवान की सेवा में लगेंगे। जब भगवान की सेवा में लगेंगे तो टाइम तो हमारे पास 24 घंटे है सबके लिए, किसी के लिए 25 घंटे तो हो नहीं सकते। मानो भगवान की 2 घंटे सेवा करनी है तो किसी न किसी की सेवा तो 2 घंटे कम होगी ना दुनिया में। जो किसी न किसी की सेवा कम होगी वो सेवा भगवान की होगी ना, तो उतना बंधन तो कम होने लगेगा ना रोज का। भाई भगवान की सेवा करोगे तो कुछ तो टाइम भगवान की सेवा में लगेगा ना। मानो भगवान घर में बिठाया है तो उसके पर्दा खोलोगे, कपड़े पहनाओगे, स्नान कराओगे तो टाइम तो लगेगा ना। इसका मतलब इतना टाइम हमारा दुनिया के अंदर बंधन से तो बचेगा ना। तो इसलिए भगवान की कथा से भगवान की सेवा में लगना पड़ता है, इसको भक्ति बोलते हैं। भगवान की सेवा अभिधेय को भक्ति बोला है, और इसका फल है भगवान से प्रेम होना। ये भगवान से प्रेम जब हमको होने लगेगा तब संसार के अंदर रहते हुए भी संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जैसे कमल के जल पत्ते के ऊपर जल नहीं ठहर सकता है, इधर उधर हिल जाता है, ऐसे संसार में ऐसे रहो जैसे पानी के बीच में कमल का पत्ता रहता है। उगता ही पानी में है, लोटस उगता पानी में है लेकिन पानी उसके ऊपर ठहर नहीं सकता है। ये भगवत गीता का श्लोक है, पदम पत्रम इवाम भसा। इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है। पानी के अंदर रहो मतलब घर के अंदर रहो, गांव में रहो, परिवार में रहो, मित्रों के बीच में रहो, लेकिन किसी को अपने ऊपर चपकने मत दो, किसी के साथ तुम मत चपको। जड़ के साथ चपके रहो। जड़ हमारी कौन सी है, भगवान, जहां से हम निकले हैं। ऊर्ध्व मूल अध: साकम। ऊर्ध्व मूल, मूल का मतलब जड़, जड़ ऊपर है भगवान से हम जहां से निकले हैं। अपने जड़ से जुड़े रहो, बाकी संसार के अंदर कितना भी विस्तार हो उसमें बंध मत जाओ। तो कमल के पत्ते की तरह इस संसार में रहने का अभ्यास करो। हरे कृष्ण। समय ज्यादा हो गया, कल इससे आगे और ग्रस्त के लिए 2-4